नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट, वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। भारतीय युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत बीते एक साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। पंत पिछले साल कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, ना तो वो आईपीएल खेल पाए ना ही वर्ल्ड कप। फैंस को अब बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार है। ऐसी खबरें आ रही थी कि पंत आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के इस बल्लेबाज ने खुद इसे लेकर जवाब दिया है। ऋषभ पंत ऑक्शन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे। उन्होंने यहां अपने फिटनेस को लेकर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा था, मैं जैसा कुछ महीने पहले था अब उससे बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अब भी 100% फिट नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में मैं फिट हो जाऊंगा। बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धास के बीच सोमवार को प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का मुकाबला 37-37 से टाई रहा। ये सत्र का दूसरा टाई मुकाबला है और वॉरियर्स की टीम इन दोनों मुकाबलों में शामिल रही है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और मैच में कई बार उतार चढ़ाव आए। मुकाबला खत्म होने में जब सिर्फ 5 मिनट का समय बचा था, तब योद्धा की टीम 35-30 से आगे थी और जीत की दावेदार मानी जा रही थी। वॉरियर्स ने हालांकि शानदार डिफेंस और महत्वपूर्ण मौकों पर मनिंदर सिंह के रेड अंक के बदौलत मुकाबला टाई करा दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों को सूचित किया है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड मई के पहले सप्ताह से ही आईपीएल 2024 के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की वनडे विश्व कप में जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हेजलवुड अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण मार्च और अप्रैल में आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। इस तेज गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज कर दिया था तथा उन्हें मंगलवार को दुबई में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में 2 करोड़ रुपए के आधार मूल्य वाले वर्ग में रखा है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार विश्व कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड सहित ऑस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ी आईपीएल के पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे। बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान 22 मार्च से 11 मई तक ही उपलब्ध रहेंगे। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तास्किन अहमद और शोरीफुल इस्लाम हालांकि अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें मार्च और अप्रैल में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला के लिए बांग्लादेश की टीम में जगह मिलने की उम्मीद है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को खेला जाना है। भारतीय टीम ने पहले वनडे में एक तरफा जीत हासिल की थी, जिससे साउथ अफ्रीका भी हैरान रह गया था। भारत के पास अब सीरीज पर कब्जा करने का मौका है। जोहानिसबर्ग में तेज गेंदबाजों के कहर में साउथ अफ्रीका का सफाया हो गया था। अब एक बार फिर KL राहुल अपनी टीम से ऐसी ही उम्मीद कर रहे होंगे। सेंट जॉर्ज की पिच गेंदबाजों के मुफीद मानी जाती है। यहां पहली पारी का औसतन स्कोर 233 है, जबकि दूसरी पारी में ये स्कोर 200 ही है। इस पिच पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 मैच खेला गया था, वहां पहले बल्लेबाजी करने में भारत को परेशानी हुई थी। इस मैदान पर अब तक 42 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 42 और दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली 21 बार जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सोमवार को यहाँ चौथे दौर में सर्बिया के अलेक्सांद्र पेड्रिके को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में पहली जीत दर्ज की। शुरुआती 3 बाजी ड्रॉ खेलने के बाद 17 साल के गुकेश ने सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए 44 चाल में जीत दर्ज की। गुकेश के 4 दौर में 2.5 अंक हो गए हैं और वो हमवतन पी हरिकृष्ण के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुँच गए हैं, जिन्होंने यूक्रेन के पावेल अल्जानोव से ड्रॉ खेला। इस जीत से गुकेश के अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ गई है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे एक अन्य भारतीय अर्जुन एरिगेसी ने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के लेवॉन अरोनियन को 41 चाल में ड्रॉ पर रोका। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाने की दौड़ में शामिल ईरान के ग्रैंड मास्टर परहम माघसुदलू ने सेनन सुगिरोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। उनके 2 अंक हो गए हैं। मौजूदा चैंपियन ओडिशा FC और उप विजेता बेंगलुरु FC को भुवनेश्वर में 9 से 28 जनवरी के बीच होने वाले सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप चरण के ड्रॉ के अनुसार इन दोनों के अलावा ग्रुप डी में इंडियन सुपर लीग में खेलने वाली एक अन्य टीम FC गोवा और आई लीग में खेलने वाले क्लब को रखा गया है। हाल ही में AFC के अंतर क्षेत्रीय प्लेऑफ के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले ओडिशा FC ने 2030 के सुपर कप फाइनल में बेंगलुरु FC को हराया था। कोलकाता की 2 चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल को भी एक ही ग्रुप में रखा गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।